আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া ইন তুউদ্দু নিয়মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, সাদাকাল্লাহুল আযীম। বারগাহে রিসালাত মে দুরূদ পাক কা নজরানা পেশি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়্যিল কাইয়্যুম। আজ কে আমারে ইস নশিস্ত কা উনওয়ান হে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কি নিয়মতে। আপ জানতে হ্যায় কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নে ইনসান কো বেশুমার নিয়মতে আতা ফরমাই, আর ও এসি বেশ বহা নেমতে হ্যাঁ জিনকা কোই নেমুল বদল নহি হে। খুদ কুরআন করিম মে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু ইরশাদ ফরমাতা হে, ওয়া ইন তুউদ্দু নিয়মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, আগর তুম ইন নেমতো কো শুমার করো গিনো, লা তুহসুহা নহি কর সকতে। আর ইয়ে হকীকত হে, দো চার নেমতে নহি, দো চার হাজার নহি, লাখ নহি, করোড় নহি, বেশুমার হ্যাঁ জিনকো গিনা নহি যা সকতা, জিনকো শুমার নহি কিয়া যা সকতা। কুছ নেমতে হ্যায় খারজি আর কুছ নেমতে হ্যায় দাখলি, ইয়ানি জো হামারে জিসম মে মৌজুদ হ্যায়। খারজি নেমতে জিতনি ভি হ্যায় ও তো এক আলাইদা বাত হ্যায়, ইসি তরহ এক হ্যায় কায়নাতে আসগর আর এক হ্যায় কায়নাতে আকবর। কায়নাতে আসগর ইনসান কা জিসম আর কায়নাতে আকবর ইয়ে পুরি কায়নাত, পুরি দুনিয়া। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নে জিতনি নেমতে আতা ফরমাই, ওয়াফর মিকদার মে বেশ বহা নেমতে আতা ফরমাই, কায়নাতে আকবর মে ভি আর কায়নাতে আসগর মে ভি। আব সবসে পহলে হাম খুদ আপনা জায়জা লেন, আপনে জিসম কা জায়জা লেন, আর ইয়ে কায়নাতে আসগর জো হ্যায় ইসকো দেখেন, ইসমে আল্লাহ নে কেসি নেমতে আতা ফরমাই। হকীকত ইয়ে হ্যায় কি ইনসান বড়া নাশুকরা হ্যায়, ইতনি নেমতে মিলনে কে বাদ ভি ও খালিকে কায়নাত কা শুকর আদা নহি কর, কুফরানে নেমত করতা, মেরে পাস কুছ নহি হ্যায়, মেরে পাস কুছ নহি, মেরে পাস কুছ নহি। হালাঙ্কি উসকো ইয়ে সোচনা চাহিয়ে কি জব উসকে পাস কুছ নহি হ্যায় তো ইয়ে জিসম জো উসকে পাস হ্যায় ইয়েহি সব কুছ হ্যায়। ইসি জিসম মে কায়নাতে আসগর মে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নে বেশুমার নেমতে আতা ফরমা। আইয়ে জরা সা জায়জা লেন আর দেখে কি হামারে ইস জিসম মে জিসকা আল্লাহ নে হামে মালিক বানায়া হ্যায় কন কন সি নেমতে আতা ফরমাই, আর এসি নেমতে হ্যায় জিসকা নেমুল বদল নহি হ্যায়, ইয়ানি আগর ও নেমত জাইল হো জায়ে তো দূসরি উসকি জগহ নহি লে সকতি। মিসাল কে তোর পর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নে হামে কান আতা কিয়ে জিসসে হাম সুনতে হ্যায়, উসনে আঁখ আতা কি জিসসে দেখতে হ্যায়, উসনে জবান আতা কি জিসসে হাম বোলতে হ্যায়, উসনে হাত আতা কিয়ে জিসসে হাম পকড়তে হ্যায়, খাতে হ্যায়, পিতে হ্যায়, উসনে পায়ের আতা কিয়ে জিসসে হাম চলতে হ্যায়। আগর ও কান দেতা আর সামাত না দেতা, আগর আঁখ দেতা আর বসারত না দেতা, আগর জবান দেতা আর কুওয়ত গোয়াই না দেতা, আগর হাত দেতা আর পকড়নে কি কুওয়ত না দেতা, আগর পায়ের দেতা আর চলনে কি তাকত না দেতা, তো ক্যা হাম কে সকতে থে এ ইলাহুল আলামিন আগর আঁখ দে রাহা হ্যায় তো বসারত ভি দে, আগর কান দে রাহা হ্যায় তো সামাত ভি দে, আগর জবান দে রাহা হ্যায় তো কুওয়ত গোয়াই ভি দে, আগর দিমাগ দে রাহা হ্যায় তো সোচনে সমঝনে কি সলাহিয়ত ভি দে, আগর হাত দে রাহা হ্যায় তো পকড়নে কি কুওয়ত ভি দে, আর আগর পায়ের দে রাহা হ্যায় তো চলনে কি তাকত ভি দে। ক্যা হাম কে সকতে থে? নহি, হাম মজবুর লাচার, জেসা উসনে বনা দিয়া ওয়েসা বন গয়ে, বননে পর কিসি কা ইখতিয়ার নহি, কিসি কা ইখতিয়ার হ্যায়, আর আগর ইখতিয়ার হোতা তো কোই বস সুরত হোতাই নহি, এক সে এক খুবসুরত হোতা, কোই চাহতা কি ও বস সুরত হো, কোই চাহতা কি উসকে অন্দর কমি হো, নহি, খালিকে কায়নাত কি মর্জি, জেসা চাহা উসনে বনা দি। আব আগর হামারি আঁখ দেখ রহি হ্যায়, हमारा कान सुन रहा है, यानी समात मौजूद है, हमारी जबान कलाम कर रही है, हमारा दिमाग सोचने समझने की सलाहियत रखता है, हमारे हाथों में पकड़ने की कुव्वत है, हमारे पैरों में चलने की कुव्वत है, तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, यह खालिक़े कायनात का करम है ना, उसका करम, हमारा तो इख्तियार नहीं, जैसा उसने बना दिया वैसा बन गए। उसने आंख दी, करम यह किया कि बसारत भी दे दी। उसने कान दिया, करम यह फरमाया कि समाअत भी दे दी। उसने जबान दी, करम यह फरमाया कि बोलने की कलाम करने की कुव्वत भी दे दी। उसने दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत भी दे दी। उसने हाथ दिया, पकड़ने की कुव्वत भी दे दी, और पैर दिया, चलने की ताकत भी। कहने का मकसद यह है, हमारा कोई इख्तियार नहीं, यह महज अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम। कितना मेहरबान है वो कि ये सारी चीजें दे रहा है और उसके साथ साथ सलाहियतें भी दे रहा, महज अपने कर्म से, हमारा कोई इख्तियार नहीं। और एक बात याद रखिए, उसकी शान ये है, जिस तरह वो ये सारी कुव्वतें आपको अता करना जानता है, उसी तरह वापस लेना भी जानता है। ये भी याद रखना चाहिए, जिस खालिक कायनात ने ये तमाम चीजें अता की हैं, आंख में बसारत उसी के हुक्म से है, कान में समात उसी के हुक्म से, जबान में कुव्वत गोयाई उसी के करम से, दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत उसी के करम से, हाथ में पकड़ने की कुव्वत और पैर में चलने की कुव्वत उसी के करम से। तो सारी कुव्वतें जो अता कर सकता है, वो चाहे तो वापस भी ले सकता है या नहीं, उसका इख्तियार है ना, उसने अपने इख्तियार से अता कर दिया, और वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, अपने इख्तियार से ये चीजें ले ले। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जब चाहे ले ले, उसका इख्तियार है, हम नहीं कर सकते। नहीं मौला, अगर तूने आंख दी है, मरते दम तक इसमें बसारत रहनी चाहिए। अगर कान दिया है तो मरते दम तक, जब तक हम इस दुनिया में, इसमें समात रहनी चाहिए। ऐसा हो सकता है? नहीं, हमारा इख्तियार नहीं, महज अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम, उसने अपने करम से दे दिया। और अगर चाहे तो ले ले, ये भी याद रखो, उसका इख्तियार है। जो नेमतें अता कर सकता है, वो नेमतें वापस भी ले सकता है। और उसने इस दुनिया में ऐसे लोगों को पैदा कर दिया, ऐसे लोगों को हमारी इबरत के लिए पैदा कर दिया कि देखो, आज अगर तुम्हारी आंख में बसारत है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे, आज अगर तुम्हारे कान में समात है तो ऐसा नहीं कि हमेशा रहे, आज अगर तुम्हारे दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत है तो ऐसा नहीं कि हमेशा रहे, तुम्हारी जबान में आज कुव्वत गोयाई है तो ऐसा नहीं कि हमेशा रहे, मैं जब चाहूं छीन सकता। जब हम अपने माशरे पर नजर डालें और देखें, हमें पता चलेगा कि ऐसे लोग हैं कि जिनके कान हैं मगर वो सुन नहीं सकते, जिनकी आंखें हैं मगर वो देख नहीं सकते, जिनकी जबान है मगर वो कुव्वत गोयाई से महरूम है, जिनका दिमाग है मगर सोचने समझने की सलाहियत से महरूम, जिनके हाथ हैं मगर पकड़ नहीं सकते, जिनके पैर हैं मगर चल नहीं सकते, है ना ऐसे माशरे में लोग। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को पैदा कर दिया कि तुम्हारे पास ये चीजें हैं और उनके अंदर ये सलाहियतें भी हैं। इनके पास भी कभी ये चीजें थी और सलाहियतें थी, हमने जब चाह छीन लिया। महज हमारा करम है कि हमने ये नेमतें अता की हैं और उसके अंदर वो सलाहियतें भी अता की। अब मिसाल इसकी आप ये समझें, फालिज एक बीमारी है ना, हवा लग जाती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रुक जाता, ये जो हाथ काम कर रहे हैं, ये जो जबान चल रही है, दिमाग सोचने समझने की सलाहियत इसके अंदर है, पैरों में चलने की ताकत है, ये क्यों, ये पैरों में चलने की ताकत, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, पूरे दिल के अंदर खून गर्दिश कर रहा, जिस्म के जिस हिस्से पर वो रुक जाए खून का दौरान, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रुक जाए, वो हिस्सा बेकार हो जाए। फारिज होता है ना, हाथ जिस्म से अलग नहीं होता, जिस्म के साथ अटैच है, लगा हुआ, लेकिन पकड़ने की कुव्वत नहीं। टांग पे फारिज हो गया, टांग जिस्म से अलग नहीं हो जाती, लगी हुई है, چلنے کی طاقت سے محروم. زبان پر ہو گیا, زبان کٹ کر الگ نہیں ہو جاتی, موجود ہے, قوت گویائی سے محروم. دماغ پر ہو گیا, وہ تو پھر آدمی کہتے برین ہیمریج گیا, وہ تو سرکولیشن آف بلڈ ختم, کسی کے دماغ میں خون جم گیا, ختم ہو. تو جو چیز اللہ نے عطا کی, جو نعمتیں, ان کی قدر کرو. جب تک زبان چل رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہو. جب تک زبان چل رہی, جب تک ہاتھ کام کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے رہو. جب تک پیر چل رہا ہے, قوت موجود ہے, نیک راستے کی طرف جاتے رہو. جب تک دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے, اچھی باتیں اچھے کام سوچتے رہو. کیا ہوگا؟ یہ شکرانے نعمت ہوگا. اس کی نعمتوں کا اس کے حکم کے مطابق استعمال, یہ شکرانے نعمت, اور اس کی نعمتوں کا اس کے حکم کے خلاف استعمال, یہ کفرانے نعمت. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں, ان نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کرو. جیسا وہ چاہتا ہے ویسا استعمال کرو, اور اگر اس کے حکم کے خلاف استعمال کرو گے, وہ جب چاہے گا نعمتیں لے لے, اس کا اختیار ہے, اس کی طاقت ہے, وہ جب چاہے سماعت لے لے. تو اگر کسی پر فالج ہوتا ہے تو ہاتھ موجود ہے, پکڑنے کی قوت نہیں, ٹانگ موجود ہے, چلنے کی طاقت نہیں, زبان موجود ہے, قوت گویائی نہیں. یہ ہوتا ہے نا. ایک بیماری کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو اسی لیے پیدا کر دی. ان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے کان دیا ہے تو سماعت بھی دی ہے, تو نے آنکھیں دی ہیں تو بصارت بھی دی ہے, تو نے دماغ دیا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے, تو نے زبان دی ہے تو قوت گویائی بھی دی ہے, تو نے ہاتھ دیا ہے تو پکڑنے کی قوت بھی دی ہے, تو نے پیر دیا ہے تو چلنے کی طاقت بھی دی. یہ صرف تیرا کرم ہے, ہمارا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے, محض اپنے کرم سے تو نے یہ چیزیں ہمیں عطا کر دیں, اور اپنے کرم سے ہمیشہ یہ چیزیں ہمارے پاس رہیں, تو عطا کرتا رہے. قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے ہم اس میں اور اضافہ کر دیں. جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں, اگر ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے, لازیدنکم, ہم اس میں زیادتی کر دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے کفرانے نعمت کیا تو جان لو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. اور کفرانے نعمت یہی ہے, پہلی بات اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرنا, دوسری بات ان نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس کے خلاف استعمال کرنا, یہ کفرانے نعمت ہے. اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اسی کے حکم کے مطابق استعمال کرنا, یہ شکرانے نعمت. یاد رکھیے, انسان بڑا ناشکرا, یہ ساری نعمت ہونے کے باوجود کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. ایک فقیر ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا, حضرت میں بہت مجبور ہوں, میں بہت غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نادار ہوں, ایک چیز میرے پاس نہیں. انہوں نے کہا نہیں, تمہارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں. نہیں میرے پاس کچھ نہیں. کچھ نہیں کہا؟ نہیں. اچھا اچھا, تم ایسا کرو, 1,00,000 روپے میں تمہیں دیتا ہوں, یہ اپنا سیدھا ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دو. کیوں دے دوں بھائی, 1,00,000 روپے تو ختم ہو جائیں گے, میں تو ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے محروم ہو جاؤں گا, یہ نہیں کر سکتے. کہہ رہے نہیں. اچھا میں تمہیں 5,00,000 دیتا ہوں, ایک ٹانگ کاٹ کے مجھے دے دو. بھائی 5,00,000 میں دے رہا ہوں. کہہ رہے 5,00,000 کا کیا ہوگا, میں تو ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو جاؤں گا, یہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا ایسا کرو, چلو 2,000-3,000 لے لو, ایک کان کاٹ کے دے دو مجھے. چلو تمہیں 25,00,000 دے دو, زبان کاٹ کے مجھے دے دو. اس نے کہا محترم آپ کو دینا ہے تو دیں, یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں مجھ سے, 1,00,000 کا ہاتھ دے دو اور 2,00,000 کی ٹانگ دے دو اور 5,00,000 کی زبان, کیا مسئلہ ہے, کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ کہ مذاق نہیں کر رہا, میں تجھے بتا رہا ہوں تو خود کتنا کروڑوں کا ہے. ہے نا حقیقت, کتنا کروڑوں کا تو انسان ہے, اور کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. करोड़ों की नेमतें बल्कि इससे ज्यादा की नेमतें अल्लाह ने सिर्फ तेरे जिस्म में रखी, और कहते मुझे रब ने कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं, नादार हूं। 1 लाख रुपए में एक हाथ देने के लिए तैयार नहीं, 5 लाख रुपए में टांग देने के लिए तैयार नहीं, 50 लाख में जबान देने के लिए तैयार नहीं। इन सबको जरा हिसाब तो करो, कितने करोड़ के तुम हो, है ना हकीकत। लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, उस रब का शुक्र अदा नहीं करते। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, जब वापिस आए तो जूतियां गायब, कोई ले गया। आजकल भी होता है ना, ये पहले से ही चला आ रहा, जूती चोर जब भी होते थे, अब भी आपने देखा जूती नहीं। अच्छा बहुत से तो ये करते हैं, दूसरे की पहन जाते हैं, पसंद कर करके, नहीं ये अच्छी है तो ये नहीं, ये सही है तो ये, कहते हमारी जूती भी कोई ले गया ना, हम भी पहन जाए, हमारे लिए जायज है, पसंद करके पहन जाते दूसरे की। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा आप नंगे पैर मस्जिद से वापस घर की जाने, फरमाते हैं कि मैं दिल में सोचने लगा कि देखो ये लोग जो नमाज पढ़ने के लिए आए थे जा रहे हैं, सबके पैरों में चप्पल है, कोई जूता पहना है, कोई जूती पहना हुआ है, मैं अपने आप को हकीर समझ रहा था कि मैं नंगे पैर जा रहा हूं। कहते अभी मैंने यही सोचा था कि एक ऐसे शख्स पर मेरी निगाह पड़ी कि मैं फौरन सजदे में गिर गया। मैंने देखा कि एक फकीर रास्ते में बैठा था, उसके दोनों पैर ही नहीं थे, गौर करो, उसके दोनों पैर ही नहीं थे। फरमाते मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, मैंने जब देखा कि उसके पैर ही नहीं है, मैं फौरन सजदे में गिर गया। मौला तेरा करम है मैं कि मेरे पैर तो सलामत है, जूती तो मैं फिर भी ले सकता हूं, जूती तो मिल जाएगी, पैर तो मेरे सलामत है, चल तो रहा हूं, ये तो चल भी नहीं सकता, ये तो दोनों पैरों से ही महरूम है। क्या मतलब? अपने से ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखो। ऊपर वाले को देखोगे हसद, लालच, हिर्स, हवस, ये पैदा होगा, और नीचे वाले को देखोगे शुक्र का जज्बा पैदा हो, अल्लाह की हमदो सना करोगे, शुक्राने नेमत करोगे। ऊपर वाले को मत देखो, इसके पास 2 मकान है, इसके पास 2 गाड़ियां हैं, इसके पास इतने लाख हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। नीचे वाले को देखो, एक वो भी तो है कि एक वक्त खाता है, दूसरे वक्त उसको एक लुकमा नसीब नहीं। ये तो मेरे रब का करम है कि मैं दोनों टाइम, तीनों टाइम पेट भर के आराम से मैं खाता हूं, ये करम है या नहीं? हमेशा अपने से कमतर को देखो, बरतर को ना देखो। बरतर को देखोगे फिर हवस, लालच, मैं भी कोशिश करूं मैं ऐसा हो जाऊं, मेरे पास भी 2 बंगले हो जाए, 2 कार हो जाए, मेरे पास भी ये हो जाए, नहीं। शुक्र, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, शुक्राने नेमत, मौला तूने जिस हाल में रखा है, हजारों लाखों से हम बेहतर, हकीकत है ये, हजारों लाखों से, करोड़ों से बेहतर हैं। वो भी हैं जिनको घर नसीब नहीं, रोड पर सो रहे, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, कैसी भी कैफियत हो, उनको छत ही नसीब नहीं। वो भी तो हैं जिनको तन ढापने के लिए कपड़ा नसीब नहीं, वो भी तो हैं जिनको खाने के लिए एक लुकमा नसीब नहीं। जब अल्लाह ने तुम्हें मकान दिया है, जब अल्लाह ने तुम्हें तन छुपाने के लिए कपड़े दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला तीनों टाइम भरपूर तरीके से पेट भर के तुम्हें खिला रहा है, तो फिर शुक्र अदा ना करो तो तुमसे ज्यादा नाशुक्र और कौन हो सकता। कितनी बड़ी हकीकत, और हम उससे कितना इनकार करते, उसका शुक्र नहीं करते। अगर वो ये पाबंदी लगा दे जो नमाज पढ़ेगा उसे खाना मिलेगा, और नहीं पढ़ेगा तो नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? सारे के सारे नमाजी हो जाएंगे, खाना तो सबको चाहिए ना, खाने की वजह से सारे नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मेरा रब इतना करीम है कि जो उसको मानता है उसको भी दे रहा है, जो नहीं मानता उसे भी दे रहा है, जो नमाज पढ़ रहा है उसे भी दे रहा है, जो नहीं पढ़ता उसे भी। तो आप कहेंगे फिर तो दोनों बराबर हो गए, फिर पढ़ने की जरूरत क्या? जो नहीं पढ़ रहा उसे भी रिजक मिल रहा है, और जो नमाज पढ़ता है 5 बार उसे भी मिल रहा है, तो फर्क क्या हुआ? मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है अगर हम उसे समझें। और वो फर्क ये है कि जो 5 वक्त अपनी ड्यूटी, जो उस पर फर्ज है अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना, वो ड्यूटी अदा कर रहा है, अंजाम दे रहा है, उसको भी रिजक दे रहा है, और जो नहीं कर रहा, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा, उसे भी दे रहा है। फर्क यह है कि जो नहीं पढ़ता उसे जब रिजक दिया जाता है तो बरकतें छीन ली जाती हैं, और जो पढ़ता है उसे जब रिजक मिलता है रहमतें बरकतें रिजक में शामिल कर दी जाती। ये बहुत बड़ा फर्क है। और होता क्या है, जो नहीं पढ़ता उसको रिजक मिल रहा है, बरकतें छीन ली, रहमतें छीन ली, और जब रहमत छीन ली तो क्या हुआ, हजार रुपए, दस हजार, दस लाख भी वो लेकर आया घर में, बीमारी में निकल गया, परेशानी में निकल गया, हादसात में निकल गया, दीगर बीमारियों में निकल गया। तारीख आने से पहले, पहली तारीख आने से पहले हाथ झाड़ के खड़ा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जो अल्लाह के सामने झुक रहा है, ये हमारा वफादार है, पांचों वक्त ड्यूटी अंजाम दे रहा है, रहमत बरकतें शामिल कर, अगर एक रुपया भी कमाएगा तो दिल को इत्मीनान होगा, सुकून होगा, न रंज है, न मलाल है, न मुसीबत है, न बीमारी, कोई चीज नहीं। फिर अल्लाह अपनी रहमतें शामिल करता, बरकतें शामिल करता। और बरकत जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, हम इसको समझते नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा हिजरत करके तशरीफ लाए, सरकार ने दस्ते मुबारक उठाया, इलाहुल आलमीन, मैं उस शहर में था जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब था, मैं उस शहर में था, कहां थे, मक्का मुअज्जमा में, मैं उस शहर में था जब मुझे महबूब था, अब मुझे उस जगह पहुंचाना और बसाना जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो। तो कहां तशरीफ ले गए, मदीने तैयबा, अल्लाह का सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर। अब फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, मौला यहां इनके सामने, इसके मुद में बरकतें नाजिल फरमा दे, रहमतें नाजिल फरमा दे। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, सरकार हम आए तो बीमार हो गए, हम तो परेशान हो गए, किसी को बुखार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। दस्ते मुबारक उठा दी, ए इलाहुल आलमीन, इब्राहिम खलीलुल्लाह तेरे खलील थे, उन्होंने मक्के के लिए दुआ की, मैं तेरा हबीब हूं, मैं मदीने के लिए दुआ कर रहा हूं, मदीने के लिए मैं दुआ कर रहा हूं। और दुआ क्या फरमाई, जितनी बरकतें तूने मक्के में नाजिल की हैं उससे दुगनी मदीने में नाजिल कर दे। उससे दुगनी मदीने में नाजिल कर दे। पहले जो जाता था बीमार हो जाता था, अब जिसको शिफा चाहिए वहीं पहुंच जाए, सारी शिफा मदीने में है, सारी रहमतें मदीने में है, सारी बरकतें मदीने में है, सारी दो जहां की नेमतें मदीने में है, इसलिए कि उन नेमतों का तकसीम करने वाला मदीने में, जो नेमत पूरी कायनात में कहीं ना मिले खुदा की कसम मदीने में। हुजूर ने बरकत की दुआ की, रहमत की दुआ की। और बरकत को आप क्या समझते हैं, चंद आदमी खाना लेकर बैठे, वाकया तो बहुत सारे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर देखा, सरकार के शिकमे मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ, आंखों से आंसू जारी हुए, फौरन दौड़कर घर गए, एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, अहलिया से कहा पकाओ, मैं सरकार को लेकर आ रहा हूं। दौड़े हुए फिर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सरकार एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़िबा किया है। कहने का मकसद यह था कि एक बकरी का बच्चा कितने आदमी खाएंगे, एक छोटा सा, तो दो तीन चार पांच बस। हुजूर आपकी दावत है, आप तशरीफ ले आए। किस बात पर जोर दिया, आप तशरीफ ले आइए, क्या मतलब, आप किसी को और को ना लाइए। जानते थे आका की आदत तो है, जब तक सबको ना खिलाए हुजूर खुद खाते ही नहीं। और जब ये कहा, कुर्बान हो जाओ नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम के, फरमाया चलो अबू बकर उमर उस्मान अली को ले लो, जाओ बिलाल हबशी, सलमान फारसी, सुहेब रूमी, सबको बुला लो, जाबिर ने हमारी दावत की है, चलो सब। हजरत जाबिर परेशान रजी अल्लाह तआला, मैंने तो हुजूर को कहा, इन्होंने सबको दावत दे दी, अरे आप एक आदमी को बुलाएं और वो आदमी सबको लेकर आ जाए तो आपकी क्या कैफियत होगी। और घर में खाना थोड़ा सा हो और आ जाए ज्यादा खाने वाले, तो जो साहिब खाना है, मेजबान है, उसको शर्मिंदगी की होती, खाना तो है नहीं, इतने लोग सबको लेकर चले। हुजूर अलैहि सलातो वसलाम जा रहे हैं, अब इन्होंने देखा सरकार ने तो सबको दावत दे दी, दौड़े हुए हुजूर अलैहि सलातो वसलाम से पहले घर पहुंच गए और जाकर अहलिया से कहते हैं कि मैंने तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा जिबा करके तुम्हें दिया, तुमने पकाया छोटी सी हांडी, क्या हुआ। परेशान होकर हुजूर ने सबको दावत दे दी। अब सुनो उस सहाबिया का ईमान क्या था, عورتوں کا ایمان دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی محبت دیکھو، اپنے آقا سے سچی محبت کیسی تھی، صحابہ کی تو تھی تھی، جو صحابیہ تھی ان کی محبت کیا تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حضور نے سب کو دعوت دے دی، کھانا تو کم ہے. اہلیہ نے ایک سوال کیا، دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے، تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ کہا انہوں نے دی ہے، پھر پرواہ نہیں ہے، وہ خود ہی کھلائیں گے. اگر انہوں نے دعوت دی ہے تو وہی وہ کھلائیں گے، ہمیں پرواہ کرنے کی کیا ضرورت. آ گئے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جابر کہاں پر ہے ہانڈی؟ حضور یہاں ہے، لعاب دہن اس میں ڈال دیا، اوپر سے ڈھکنا ڈھک کے بند کر دی. آٹا کہاں ہے؟ روٹی کہاں پک رہی؟ یہاں پر ہے، لعاب دہن ڈال دیا اور کہا پکا کر دیتے رہو، اس ڈھکنے کو کھول کر نہیں دیکھنا. گھر چھوٹا ہے، صحابہ کثیر تعداد میں ہیں، کیسے بیٹھیں؟ سرکار نے فرمایا دس دس آدمیوں کی ٹولی آتی رہیں، کھاتی رہیں، جاتی رہیں. دس آدمی آئے، اہلیہ نے دیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کے لاتے رہے، دیتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے، جاتے رہے. ارے پانچ آدمیوں کا کھانا 500 نے کھا لی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا اور اس کے بعد ہانڈی کھول کر دیکھی تو اتنا ہی تھا جتنا پکایا تھا. یہ ہے برکت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے نام میں برکت ہے، جن کے ذکر میں برکت ہے، ان کے لعاب میں برکت نہیں ہوگی. جس کے لیے وہ خود دعا کر دیں وہاں برکت نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ارے جہاں ذکر ہو جائے وہاں برکت ہو جائے، جہاں نام لے دیا جائے وہاں برکت ہو جائے، تو جس روضے میں وہ آرام فرما ہے وہاں کتنی برکتیں، جس شہر کے لیے انہوں نے دعا کی وہاں کتنی برکتیں. تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ برکت اور رحمت کیا ہے. جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کے رزق میں اللہ رب العالمین برکتیں شامل کر رہا، اور برکتوں کا مقصد یہ ہے کہ بیماریوں سے دور ہے، پریشانیوں سے دور ہے، حادثات سے دور ہے. اگر کم بھی کما رہا ہے پورے مہینے آرام سے کھا رہا، کوئی فکر نہیں ہے. اور جو لوگوں کو دھوکہ دے کر غلط طریقے سے پیسے کا حصول، جس کی زندگی کا مقصد اس کے ساتھ رزق، اس کو بھی مل رہا ہے مگر رحمتیں برکتیں چھین لی. رزق کا تو ہم نے وعدہ کیا ہے دیں گے، مگر کیونکہ ہمارے حکم کی نافرمانی ہے برکتیں نہیں دیں گے، رحمتیں نہیں دیں گے، چھین لو. لاکھوں روپے بھی اگر وہ کما رہا ہے مہینہ پورا ہونے سے پہلے خالی ہاتھ کھڑا، پریشانی میں نکل گیا، بیماری میں نکل گیا، حادثات میں نکل گیا، دیگر چیزوں میں نکل گیا، کچھ نہیں. اس لیے دو چیزیں یاد رکھیے، رزق کا حصول درست ہو، پیسے کا حصول درست ہو، اور دوسرے اس کا خرچ درست ہو. یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو جھوٹ بول کر پیسہ نہیں بٹوریں گے، غلط کام کر کے پیسہ نہیں حاصل کریں گے، ہمیشہ حق حلال کی کمائی، خون پسینے کی کمائی سے ہم پیسہ حاصل کریں گے، اور جب وہ پیسہ حاصل ہو جائے گا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، ویسے خرچ کریں گے. دو چیزیں درست ہو جائیں، یہی پیسہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. اسی پیسے نے فرعون کو، نمرود کو جہنم میں داخل کر دیا، اور اسی پیسے سے عثمان غنی نے حضور سے جنت خرید. پیسہ فی نفس ہی غلط نہیں ہے، استعمال غلط ہو جائے نتیجہ غلط ہو جائے، حصول غلط ہو جائے تو خرچ بھی غلط ہو جائے گا. مال حرام بود بجائے حرام رفت، جیسا حرام مال آتا ویسے ہی نکل جاتا. ایک پیسہ حق حلال کا کماؤ گے، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، بیماریوں سے پریشانیوں سے سب سے دور. کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں نازل فرمائیں، اور جتنی نعمتیں ہیں اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. ایک نعمت ہے جو خالق کائنات نے بنائی، اور ایک نعمت ہے جو بندوں نے بنائی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہاتھ، یہ پیر، آنکھ، زبان، کان، یہ پورا چہرہ جسم کس نے بنایا؟ خالق کائنات نے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آرٹیفیشل لگا دیتے ہیں، یعنی بالکل الگ ہو جائے، بالکل ویسی بنا کر ٹانگ لگا دی. یعنی وہ آدمی اگر آپ کے سامنے کھڑا ہے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مصنوعی ٹانگ ہے، آرٹیفیشل ہے، ڈاکٹر نے لگا دی، آپ چل سکتے ہیں، لیکن احتیاط ہے، بھاگنا نہیں ہے. दौड़ के नहीं चलना जैसे पहले चलते थे, क्यों? ये तुम्हारी असली टांग नहीं है, ये दूसरी लगाई गई, अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी। उछलते थे, कूदते थे, रेस लगाते थे, जीने पर भाग भाग के चढ़ते थे, भाग भाग के उतरते थे, यही था ना अपनी टांग में, ओरिजिनल में यही है। और जब डॉक्टर ने लगाई, लगा तो दी वैसे ही, एहतियात बताती भागना नहीं है, अगर भागोगे तो क्या होगा, तुम आगे जाओगे टांग यहीं रह जाएगी, है ना बात? फर्क क्यों है? पहले खालिक ने बनाई थी, अब मखलूक ने बनाई, जमीन आसमान का फर्क। इसी तरह नाक, इसी तरह कान, इसी तरह हाथ, जिस्म का कोई भी हिस्सा आप ले ले, आर्टिफिशियल जो भी है, एहतियात फौरन बता दी जाएगी, इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं चलना। और जो जो कुछ बनाता है वही उसका इस्तेमाल भी जानता है, जिसने बनाई है वही इस्तेमाल जानता है। मिसाल के तौर पर आप एक मोबाइल ले आए खरीद कर, या एक फ्रिज ले आए, फ्रिज, डी फ्रीजर, जानते हैं डी फ्रीजर? अब तो सारे जानते होंगे, गोश्त रखा होगा सबके घर में, है ना, बकरीद का गोश्त पहले से डी फ्रीजर ले लेके रख ली, गोश्त आएगा इसमें जमा करेंगे, फिर उसके बाद राने भून के खाएंगे। डी फ्रीजर जब आता है उसके साथ एक किताब आती है, छोटी सी कैटलॉग, बल्कि हर एक के साथ, जो भी मशीन आप लें ऐसी मशीन, उसके साथ कोई मशीन है तो वो है डी फ्रीजर है, फ्रीजर है, या कोई भी चीज है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक, एक किताब आती है, किताब, किताब में क्या है, आप किताब को खोलकर पढ़ें, उसमें लिखा है इसके इतने दिन के बाद एक घंटे इसको बंद कर देना है, मुसलसल इस्तेमाल करोगे खराब हो जाएगा, इसकी सफाई करनी है, पानी ना खड़ा हो जाए ज्यादा, कोई और चीज ना गिर जाए, गंदगी ना हो जाए, ये सब चीजों से सफाई करो हर आठवें दिन या हर दूसरे तीसरे दिन, और एक महीने में एक मर्तबा इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दो, क्या करो, बिल्कुल ऑफ कर दो, बंद कर दो, क्यों, उसे भी तो सुकून चाहिए, बंद कर दो। अगर उस किताब के मुताबिक चलोगे तो क्या होगा, उस मशीन की जिंदगी बढ़ जाएगी, बात समझ रहे हैं आप? आप तो बहुत समझदार हैं, मिसाल से पहले ही समझ जाता, उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। और अगर जो किताब में लिखा है उसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, 10 साल चलने वाली चीज 5 साल में खराब हो जाएगी या 1 साल में ही खराब हो जाएगी, होता है या नहीं होता? जो कुछ किताब में लिखा है, अच्छा किताब पे हम क्यों अमल करते हैं, कि जिस कंपनी ने बनाई है उसी ने किताब भी लिखी है, जिस कंपनी ने वो फ्रीजर बनाया है, फ्रिज बनाया है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई उसी ने किताब भी लिखी, कि जो बनाता है वही इस्तेमाल का तरीका भी जानता है, ना बात? जब ये बात आप समझ लें, अब मैं आगे बढ़ूं। ये हमारे पूरे जिस्म की मशीनरी जो है, ये किसने बनाई? खालिक कायनात, वही जानता है इसको कैसे इस्तेमाल करना, उसने इस मशीन को भेजा और इसके साथ भी एक किताब भेज दी, कुरान मजीद फरकाने हम, मेरे बंदो मैंने ये बस जिस्म बनाया है, मैं जानता हूं कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये किताब भेज रहा हूं, इस किताब को पढ़ते रहो, इस जिस्म को इस्तेमाल करते रहो, जमीन पर दौड़कर मत चलना है, इसी जमीन में तुम्हें जाना है, अगर भाग भाग कर उछल कर कूद कर चलोगे ये जमीन कोसेगी, इसी में तो जाना है, जब जाओगे तो ऐसे दबाएगी, इधर की पसलियां उधर निकल जाएंगी, आराम से चलना, सुकून से चलना, वकार के साथ चलना है। ये जबान मैंने बनाई है, किसी की दिलाजारी नहीं करनी है, किसी को गालियां नहीं देनी है, किसी को बुरा भला मत कहना है, ये आंख मैंने बनाई है, गलत मनाजिर नहीं देखने हैं, गलत चीजों को कसदन नहीं देखना है, ये कान मैंने बनाया है, गलत बातें कसदन नहीं सुननी है, ये हाथ मैंने बनाया है, हराम की तरफ नहीं बढ़ाना है, ये पैर मैंने बनाया है, हराम की तरफ चल कर नहीं जाना, सब कुछ कुरान में लिख दिया, और बल्कि लिख क्या दिया, अपने हबीब को नमूना बनाकर भी भेज दिया, अगर फिर भी ना समझे तो मेरे हबीब को देख लो, जैसा इन्होंने किया वैसा कर लो, यहां भी कामयाब हो जाओगे वहां भी कामयाब। तो जिस तरह हम उस किताब को देखकर उस मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, हम कुरान को पढ़कर अपने इस जिस्म की मशीनरी को इस्तेमाल करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें और इजाफा फरमा देगा, इंसान की उम्र में, बरकत में, रहमत में, रिजक में, ताकत में, कुव्वत में, हर चीज में, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्राने नेमत करोगे हम इजाफा कर दें, वला इन कफर तुम ان عذابی لشدید، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو سمجھ لو ہمارا عذاب بڑا سخت. پھر عذاب کی وعید سنا دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور سورہ رحمان میں تو نعمتوں کا ذکر جا بجا کیا اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. ایسی بے بہا نعمتیں نازل کی. اگر تم ان نعمتوں کو دیکھ لو تو مسلسل سجدے میں پڑے رہو تو تب بھی شکر ادا نہیں ہو. صرف ایک بات یاد رکھیے، بلکہ دو باتیں یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھیے، برتر کو نہیں دیکھیے. ایک چیز، اوپر والے کو دیکھو گے ہرس حوث لالچ پیدا ہوگی، میں یہ کر لوں میں یہ کر لوں، اور نیچے والے کو دیکھو گے قناعت پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ پر توکل بھروسہ شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور دوسری بات، جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کر لو، یہی شکرانے نعمت. اور اگر اس حکم کے خلاف استعمال کرو گے تو پھر قرآن کہتا ہے ان عذابی لشدید، وہ پھر کفران نعمت ہو جائے. تو یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اور اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو عطا فرمائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر کریں، اور سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ ان نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں. جو ڈیوٹی اس نے پانچ وقت ہماری لگائی ہے پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس کے علاوہ بھی جتنی اس کی حمد و ثنا کر سکیں کرتے رہیں. انشاءاللہ امید ہے اس کی رحمت سے، اس کی ذات سے، کہ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو شکرانے نعمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفرانے نعمت سے بچائے. آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے تیرا ذکر سننے کے لیے اس نشست میں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا ہو، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.